पृष्ठ संख्या 154, 13। हिंदी आलोचना का रचनात्मक और जीवंत रूप सदी के अंत में उन वरिष्ठ रचनाकारों की आलोचनात्मक टिप्पणियों में दिखाई पड़ने लगा जिन्होंने अपने सृजनात्मक साहित्य से महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। इनमें विशेष रूप से उदय प्रकाश, राजेश जोशी और अरुण कमल के नाम लिए जाने चाहिए। इनके अलावा एक और शख्सियत जिस पर कम ध्यान दिया गया, नीलाभ की है। इनमें से किसी ने वैसा बहुत नहीं लिखा जो समालोचना को ठेठ परंपरागत समझ और ढांचे में अटाया जा सके, पर जो लिखा वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन रचनाओं की समझ के आयतन का विस्तार करता है, नए कोणों से उनके अनदेखे पक्षों पर रोशनी डालता है और आलोचना की चली आती अवधारणा में परिवर्तन का एहसास उगाता है। इन सभी रचनाकारों ने कुछ टिप्पणियों, नोट्स, डायरी, साक्षात्कार के माध्यम से साहित्य से जुड़े तमाम पक्षों और प्रश्नों पर जो लिखा या कहा, इसका विशेष महत्व इस दृष्टि से है कि उससे साहित्य के बारे में बदलती अभिरुचि और दृष्टिकोण में आने वाले परिवर्तन का पता लगता है। 20वीं सदी के अंत से 21वीं सदी के आरंभिक दशक के बीच आने वाला सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि साहित्य को विशिष्ट एक्सक्लूसिव कला के रूप में देखने समझने की प्रवृत्ति छीण हो चली थी, या फिर वह सिर्फ अकेडमिक किस्म की आलोचना तक सीमित हो गई थी। चित्र और संगीत कलाओं से तो कविता का पुराना रिश्ता था जिसका निर्वाह छायावाद युग तक बराबर किया गया, पर फिल्म, पत्रकारिता, टेलीविजन, विज्ञापन जैसे अभिव्यक्ति के दूसरे रूपों से सहकारिता का संबंध और आपसी लेन देन जैसा पिछले 2 दशकों में दिखाई पड़ा वैसा पहले नहीं था। सूचना तकनीकों के तीव्रगामी विस्तार ने भी आपसी संपर्क और एक दूसरे के इलाकों में घुसपैठ को सुगम बना दिया था। पृष्ठ संख्या 155। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्रों के रविवारीय संस्करणों में साहित्य के नाम पर स्तंभ लेखकों, समीक्षकों, टिप्पणीकारों और आलोचकों की अच्छी खासी जमात पैदा हो गई जिनका काम समसामयिक विषयों पर तुरंतवादी लेखन करके पैसा कमाना और आत्म प्रचार साधन रहता है। इन समाचार पत्रों का सर्कुलेशन किसी नियमित साहित्यिक पत्रिका या पुस्तक की तुलना में कई गुना होता है। समाचारों की तरह ही छपने वाली साहित्यिक सामग्री भी अखबार की नीति संपादक या उसके सहकर्मियों के साथ तालमेल के तहत छपती है, लिहाजा इन प्रायः प्रायोजित समीक्षाओं पर भरोसा कम ही किया जा सकता है। इनमें किसी प्रवृत्ति की खोज और निर्धारण संभव नहीं है। इस दृष्टि से लेखकीय दायित्व संजीदगी से निर्वाह करने वाले रचनाकारों के असंचरित लेखन या विचार विमर्श के बीच साहित्य की दिशा और दशा के बारे में कहीं अधिक मूल्यवान सूत्र उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे प्रयासों में अरुण कमल की कविता और समय 1998 और गोलमेज 2009, उदय प्रकाश के साक्षात्कारों का संग्रह अपनी उनकी बात 2008 और ईश्वर की आँख, राजेश जोशी की एक कवि की नोटबुक और समकालीनता और साहित्य 2010 और नीलाभ की प्रतिमानों की पुरोहिती 2005 और पूरा घर है कविता 2008 का जिक्र वाजिब होगा। इन सभी रचनाकारों में एक बात समान है, उपर्युक्त कृतियों की रचना किसी एक विषय पर सुनियोजित ढंग से आलोचना के रूप में नहीं की गई। ये सभी संकलन है उन वक्तव्यों, टिप्पणियों, आलेखों और साक्षात्कारों के जो अलग अलग समय और अवसरों पर प्रस्तुत किए गए, लिखित या वाचिक, और बाद में एक जिल्द में इकट्ठा कर दिए गए। इनमें न विषयों की कोई बंदिश है न कोई कालक्रम, फिर भी भले ही अवसर के अनुरोध से हो, पर इनमें ऐसा बहुत कुछ है जिससे इस दौर की वैचारिकता और आलोचना के तेवर का बोध भी होता है और साहित्य के सामाजिक संदर्भ और सरोकारों की जानकारी भी मिलती है। कविता और समय ब्रैकेट में 1998 के बारे में खुद अरुण कमल का कहना है कि यह पत्रिकाओं की आदेश पूर्ति का फल है। यह संकलन है 17-18 वर्षों में लिखित व प्रकाशित कुछ आलोचनात्मक निबंध एवं टिप्पणियों का। इनमें सबसे पुरानी इधर की हिंदी कविता 1980 की है, बाकी सब बाद, पहले पृष्ठ संख्या 156 की है, 1997 तक की। बकौल लेखक, इनमें संकलित आलोचनात्मक निबंधों में से अधिकांश आलोचना और पूर्वग्रह में छपे थे। इनके अलावा भी वह हर मिजाज की पत्रिका में छपते रहे। इनमें नया पथ, आजकल, साखी, साम्य, दस्तावेज, वसुधा, पहल, समकालीन भारतीय साहित्य, कथ्य रूप, कथा जैसे तमाम नाम शामिल हैं। इनके अलावा कुछ वक्तव्य हैं जो भारत भवन, हिंदुस्तानी एकेडमी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला आदि संस्थाओं में दिए गए। अंत में टिप्पणियां नाम से संकलित छोटी रचनाओं के बीच में पारचून शीर्षक के अंतर्गत कवि और कविता पर कुछ अंधाधुंध टिप्पणियां हैं। और वहीं अंत में तीन प्रश्नोत्तर क्रमशः तुलसीदास, त्रिलोचन और कविता और समय पर। इन रचनाओं में विषय के चुनाव का श्रेय अश्रेय लेखक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह तो आदेशदाताओं का है। पर निरपेक्ष भाव से लिखना उन्हीं रचनाओं का संभव हुआ है जो निजी संबंधों की परिधि में नहीं आते। इनमें अधिकांश रचनाकार उनके आदरास्पद हैं। तुलसीदास, निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, रघुवीर सहाय, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा आदि। नतीजा यह है कि वह अपने को पाठ केंद्रित विश्लेषण तक सीमित रखते हैं और उसी के माध्यम से समकालीन रचना परिदृश्य पर भी रोशनी डालते चलते हैं। पर इन रचनाओं का स्वर प्रायः प्रशंसात्मक ही है, कहीं-कहीं अतिरंजित भी। कारण स्पष्ट है। जब किसी रचनाकार का रचना के बारे में किसी आयोजन के अवसर पर या किसी पत्रिका संपादक की फरमाइश पर लिखा जाता है तो स्वभावतः आलोचक खामियों की नहीं खूबियों की तलाश करने का प्रयास करता है। ऐसे मूल्यांकन काफी हद तक पूर्वाग्रही हो जाते हैं, पर खूबियां तलाशने के लिए भी तो रचना में बैठने वाली अंतर्वेधी दृष्टि और उसके मर्म को पकड़ने और उद्घाटित करने का विवेक चाहिए। अरुण कमल के पास उस विवेक की कमी तो है नहीं, उसे व्यक्त करने वाला स्वच्छ सार्थक गद्य भी है। लगे हाथों अपने समय के विवादों के प्रति सजगता और उनसे जुड़े प्रश्नों में भागीदारी करने की व्याकुलता भी इन्हीं रचनाओं में देखी जा सकती है। एकाध आलेख साहित्य क्या है, जैसे अकादमिक से सवाल पर जो संक्षिप्त है, पर साहित्य की समाज सापेक्षता पर बड़े व्यापक संदर्भों के हवाले से लिखा गया है। पर यह भी तो सही है कि ना होती फरमाइशें पृष्ठ संख्या 157 तो ना होती आलोचना, क्योंकि वह मूलतः तो कवि ही हैं पर विचारवान कवि। अरुण कमल की दूसरी आलोचना पुस्तक गोलमेज उनकी पहली पुस्तक के 9 वर्ष बाद 2008 में प्रकाशित हुई। उन्होंने भूमिका में दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो शीर्षक के औचित्य की सफाई की। हर आलोचना कर्म वास्तव में एक गोलमेज वार्ता है जहां सारे मूल्य प्रतिनिधि एक साथ बैठकर लड़ते झगड़ते हैं और कुछ फैसले भी संभव हुआ तो लेते हैं। उनकी यह सोच और पुस्तक का शीर्षक संभवतः अंग्रेजी में प्रचलित आलोचकों की उस अड्डेबाजी की परंपरा से प्रेरित है जिसकी शुरुआत टेबल टॉक नाम से सैमुअल जॉनसन ने की थी और विस्तार रोमांटिक कवि कॉलरिज के हाथों हुआ। बहरहाल दूसरी बात जो उनके पहले संग्रह के बारे में भी लागू होती है, यही कि इस संकलन के निबंधों की रचना भी उन संस्थानों के आयोजनों में, व्याख्यानों या परिचर्चा में भागीदारी के निमित्त हुई जहां उन्हें आमंत्रित किया गया। ये निबंध भी विभिन्न पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले की ही तरह पत्रिकाएं और विषय दोनों विविध हैं। गो कि सभी निबंधों के अंत में अवसर और पत्रिका का ब्यौरा नहीं दिया गया है, जैसे भीष्म साहनी ना ममार ना जिरयति और अंतर्यात्रा निर्मल वर्मा जैसे मार्मिक स्मृति लेखों के अंत में जो वस्तुतः शोकांजलियां हैं। विषयों का दायरा पहले संकलन की तुलना में अधिक व्यापक भी है और विविधतापूर्ण भी। कारण वही आलोचना और फरमाइश के अनुसार पहले हिस्से में वह कबीर के मस्तक पर मोरपंख से शुरू कर कवि नेरुदा तक आते हैं। दूसरे में कविता के नए प्रतिमान की पुनः प्रतिष्ठा के बाद अनुवाद संदर्भ पर गोलमेज और फिर समकालीनता और कविता के रिश्ते और हिंदी समाज में साहित्य और साहित्यकार की स्थिति पर कुल मिलाकर चार निबंध। तीसरे भाग में कुछ स्मृत्यालेख, कुछ कृतियाँ और अंत में रामविलास शर्मा, कुछ प्रश्न कुछ उत्तर। प्रश्नकर्ता का नाम नहीं दिया गया पर प्रश्नोत्तर की तर्ज कुछ ऐसी है जैसे उत्तर इस वार्तालाप का पूर्व पक्ष हो और प्रश्न उत्तर पक्ष। और एक बार फिर पारचून शीर्षक के अंतर्गत कवि कविता और समाज पर वही अंधाधुंध टिप्पणियाँ। और अंत में दो वक्तव्य। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की क्रमशः 20वीं और 25वीं वर्षगांठ पर और तीसरा स्वयं साहित्य अकादमी का पुरस्कार ग्रहण करने पर। इन वक्तव्यों की पृष्ठ संख्या 158। विशेषता इनका रचनात्मक गद्य है। हर वक्तव्य हिंदी और हिंदी की कविता के भविष्य के बारे में कवि की कुछ भविष्यवाणियों पर खत्म होता है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा समाज कवि का समान धर्मा होगा। कविता की मुक्ति और मनुष्य की मुक्ति एक साथ होगी और हमारी कविता, हमारे देश की कविता एक साथ कई शताब्दियों में रहती हुई अनेक पंचांगों को एक साथ मानती हुई एक ऐसे काल में भी अवस्थित होगी जहाँ कोई पंचांग नहीं होता, जहाँ दिन मास वर्ष की कोई गणना नहीं होती, जब धरती इतनी स्वच्छ और पवित्र होगी जैसे घर का आंगन, और तब जूतों की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्वप्नशीलता, ऐसा भावोच्छलन कितना ही आश्वस्तकारी हो, आलोचनात्मक विवेक के बारे में सवाल तो खड़ा करता ही है। संकलन को पारचून या परचून धर्मी बनाने का खतरा भी पैदा करता है। क्या इन्हें शामिल करना बहुत जरूरी था? उदय प्रकाश ने ठेठ आलोचना के रूप में परिभाषित किए जाने के नजरिए से शायद ही कुछ लिखा हो, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनकी आंख आलोचना के परिदृश्य, उसके सरोकारों और उससे जुड़े सवालों पर ना रही हो। उदय प्रकाश के साक्षात्कारों का एक संग्रह है अपनी उनकी बात, औरों के प्रश्नों के उत्तर में जो उन्होंने कहा, वह अपनी और उनके प्रश्नों के उत्तर में जो औरों ने कहा, वह उनकी बात है। प्रश्नों का संबंध मुख्यतः उदय प्रकाश की रचनाओं के मिजाज से है, पर उत्तर उसी ढब की दूसरी रचनाओं को समझने में भी मददगार हो सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो साहित्य के बुनियादी और मौजूदा सवाल हैं। कुछ मूल्यांकन परक फैसलाकुन ढंग की टिप्पणियां हैं जो कुछ लोगों के लिए बहस तलब हो सकती हैं। मसलन, आप जिसे नई कहानी का आंदोलन कह रहे हैं, मैं उसे कोई आंदोलन नहीं मानता। वह कथा साहित्य के व्यवसायीकरण का प्रारंभिक दौर था, जिसका लाभ सबसे ज्यादा नई कहानी की उस तिकड़ी या चौकड़ी ने उठाया जिसके बारे में सब जानते हैं। वैसे दूसरे कहानीकारों या उनकी उपलब्धियों को नकारने के, उनको हटाकर स्वयं को स्थापित करने के तरीके के रूप में देखते हैं, जिसकी अति 7वें दशक में हुई, जब कविता में नई कविता, अकविता, भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी आदि, और कहानी में नई कहानी, अकहानी, समांतर कहानी आदि के तथाकथित आंदोलन चल रहे थे, लगभग एक अराजकता का दृश्य रहा। पृष्ठ संख्या 159। इसी तरह उनका यह कहना कि साहित्य में प्रगतिशील जनवादी, दलित और स्त्री जैसे विभाजन होने ही नहीं चाहिए। इसी ढंग का जवाब उन्होंने लेखक संगठनों के बारे में पूछे गए सवाल का दिया। ये नाम मात्र के संगठन हैं और लेखक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक संगठनों की नकल है। जिस तरह राजनीतिक संगठन का काम आजकल सत्ता का प्रबंधन माना जाता है, उसी तरह ये भी साहित्य संस्कृति के प्रबंधन को अपना काम मानते हैं। लेखक भी मध्यवर्गीय हैं, उनके संगठन भी मध्यवर्गीय हैं, और मध्यवर्ग में जो कमजोरियां व्यक्तिवाद, अवसरवाद आदि होती हैं, वह लेखकों में भी हैं और उनके संगठनों में भी। पूरा समाज जिस अपसंस्कृति और उपभोक्तावाद का शिकार है, उसके शिकार लेखक भी हैं और उनके संगठन भी। यह बात जब एक अनुभवी और सफल मध्यवर्गीय रचनाकार के द्वारा कही जाती है, तो इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। साहित्य की दुनिया में भूमंडलीकरण और उससे पैदा होने वाले बाजारवादी दबाव को काफ़ी समय से कोसा सराहा जा रहा है। उदय प्रकाश ने दोनों के बीच कार्यकारण संबंध का खुलासा करते हुए बाजार के प्रभाव की अनिवार्यता को निसंकोच स्वीकार किया। बाजार हमसे कहीं अलग नहीं, हम स्वयं भी बाजार में हैं। और दूसरी बात यह कि जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उसमें हम भी हैं और हमारे साहित्य का पाठक या ग्राहक भी। अब अगर वह हमारी साहित्यिक भाषा को नहीं समझता और बाजार की ही भाषा समझता है, तो क्यों ना हम बाजार की भाषा में लिखें? हम लोगों को भी जो उन मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं जिन पर आज संकट की घड़ी है, अपना एक दबाव बनाने के लिए बाजार की भाषा को अपनाना होगा। उदय प्रकाश का यह कथन उनकी कई रचनाओं की अनोखी बुनत और शैलीगत प्रयोगों की समझ के लिए कुंजी का काम करता है। इसके अलावा भी साहित्य की समझ और मूल्यांकन से जुड़े तमाम प्रसंगों पर उन्होंने अपनी जवाबदेही के दौरान बेबाक ढंग से विचार किया। मसलन, रमेश उपाध्याय से बातचीत में इस बात को सतर्क साबित करने की कोशिश, जादुई यथार्थवाद तीसरी दुनिया के देशों की अपनी चीज है। या कहानी के बारे में यह कहना कि कहानी में आख्यान की मूल संरचना में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं। कहानी ऊपर से भले ही कुछ बदली हुई दिखाई दे, पर भीतर से लगभग वही है जो परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए कहा जाता है पृष्ठ संख्या 160 कि दुनिया की हर कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, हम केवल उसका पुनराख्यान करते हैं। जाहिर है यह उनकी अपनी कहानी कला पर विदेशी प्रभावों के आरोपों को निरस्त करने का प्रयास भी है। उदय प्रकाश में अपने ऊपर किए जाने वाले आरोपों को स्वीकार करने का दम भी है और उनकी सफाई देने का विवेक भी। कहानी रचना में पुरानी लोक कथाओं, आधुनिक जीवन से पहले की गाथाओं, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले मोटिफ सबका इस्तेमाल करके भी यथार्थवादी रचना की परंपरा हमारे यहाँ कैसे पहले से ही चली आई है। उसे यूरोप से उधार ली गई प्रवृत्ति के रूप में देखने समझने के चलन की भी काट करते हुए उन्होंने उसकी देसी जमीन और परंपरा पर जोर दिया। सोदाहरण ऐसा ही एक और मसला मीडिया द्वारा यथार्थ की प्रस्तुति का है। उन्होंने सूचना संपन्नता और यथार्थ की जानकारी से अलग करते हुए उस वास्तविकता का खुलासा किया। आज जो मीडिया का सूचना संजाल है, वह यथार्थ को हम तक पहुंचने नहीं दे रहा या अपने मनोवांछित रूप में पहुंचा रहा है। वह सूचनाओं को देने या दिखाने का ही नहीं, छिपाने या दबाने का काम भी करता है। इसलिए हमें इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि हम मुक्त बाजार और मुक्त सूचना के युग में जी रहे हैं। हमें मीडिया प्रवृत्त सूचनाओं के बजाय अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने ज्ञान, चेतना, विवेक और संवेदना पर भरोसा करना चाहिए। हिंदी आलोचना और आलोचकों के प्रति उनके मन में गहरी कड़वाहट है। उन्होंने फतवा दिया कि हिंदी में दरअसल अकादमिक और सृजनात्मक अर्थों में आलोचना का अस्तित्व है ही नहीं। उनके इस कथन में सत्य का अंश भले ही हो कि संस्कृति के क्षेत्र में सत्ता संस्थान के भ्रष्ट होने की शुरुआत सत्ता से जुड़े लेखकों, बौद्धिकों के भ्रष्ट होने के बाद ही शुरू होती है, पर उनकी ऐसी बहुत सी कटुक्तियों का कारण उनके कुछ निजी अनुभवों से उपजे बैरभाव और हिसाब किताब ही रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं। उन्होंने रह रहकर जिस तरह बाहरी प्रभावों से प्रेरित रचना और आलोचना कर्म की भर्त्सना की है, उससे कभी कभी संदेह सा होने लगता है कि कहीं यह अपने लेखन के कुछ विदेशी प्रेरक स्रोतों से ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं है। वो हेनरी जैसे अंग्रेजी के बड़े कथाकारों की मात्र कुछ तेज तर्रार कहानियों का प्रभाव लेकर हिंदी में कथाकारों की भरपूर फसल को उदय पृष्ठ संख्या 161 प्रकाश जिस तेवर से खारिज करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि उनकी अपनी जादुई यथार्थवादी रचनाओं को भी उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी शुद्ध देसी जमीन की फसल नहीं मानता। वह आलोचना के स्वदेशीकरण की जरूरत पर जोर दें, या तो समझ में आता है पर खुद दर्जनों विदेशी चिंतकों और रचनाकारों की दुहाई देते हुए तमाम परिचित, अल्प परिचित, अपरिचित विद्वानों के हवाले से अपनी बात कहे और दूसरों को धिक्कारे, यह शोचनीय है। जिस इफारात से वह इतालो, काल्विनो, रोलां बार्थ, अम्बर्तो एको, टेरी इगल्टन जैसे तमाम विदेशी लेखकों की नेम ड्रॉपिंग करते चलते हैं, उतनी सहजता या बहुलता से प्राचीनों से लेकर आधुनिक आलोचकों चिंतकों की मिसप्रिंट है। परंपरा में कोई बड़ा नाम उनकी स्मृति में नहीं उभरता। हिंदी आलोचना से उनकी यह शिकायत भी विचारणीय है कि उनसे ऐसे कवियों की लंबी सूची के महत्व का परचम क्यों नहीं उठाए रखा जिन्होंने एक या दो बेशक बहुत अच्छी कविताएं लिखकर लेखनी को विराम दे दिया। उदय प्रकाश की गिनाई हुई सूची में हिंदी की सुपरिचित और प्रशंसित कविताएं हैं। अपने रचनाकाल के लंबे समय बाद तक उनका जिक्र किया जाता रहा है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि उसने कहा था जैसी रचनाओं की अस्थाई कीर्ति की एक वजह गुलेरी जी का बहुमुखी कृतित्व और विपुल सृजन चिंतन भी था, तो इन कवियों की विस्मृति की एक वजह उनका अल्पजीवी रचना कर्म है। एकाध रचनाएं किसी रचनाकार को अस्थायी यश की दावेदार नहीं बना सकती। उदय प्रकाश ने खुद बच्चन जी के इस विश्वास का कि जब लिखो तो जम के लिखो समर्थन करते हुए लिखा था कि नए रचनाकारों के लिए उनकी यह प्रेरक बात काफी काम की है। इसमें शक नहीं कि उदय प्रकाश ने कहानियाँ जब लिखी जम के लिखी, हर कहानी के पीछे की लंबी तैयारी और एक दूसरी के बीच लंबा अंतराल इसका प्रमाण है। यह गुंजाइश पत्रकार लेखक के पास नहीं होती। अखबारों पत्रिकाओं के लिए जो खुदरा लेखन होता है उसमें अक्सर तात्कालिक दबाव के तहत तुरंत प्रतिक्रिया को कलमबंद करके चलता करने की मजबूरी होती है। ऐसे मौक़ों पर लेखक की अपनी जमा पूंजी यानी पढ़ा लिखा अर्जन मनन काम आता है और लिखे हुए की गुणवत्ता पर अपनी छाप छोड़ता है। उदय प्रकाश के पास ऐसे पूंजी की पृष्ठ संख्या 162 कमी नहीं है। यह बात अलग है कि वह प्रायः समयबद्ध भी हैं और पश्चिमोन्मुख भी। उनकी ऐसी रचनाओं के दो संकलन क्रमशः ईश्वर की आँख 1999 और नई सदी का जनतंत्र 2008 में प्रकाशित हुई। पहली में प्रकाशन वर्ष से 2 दशक पहले से लिखे जाते रहे आलेखों का संग्रह है और दूसरे में बकौल खुद उनके छिटपुट यहाँ वहाँ लिखे गए आलेखों, टिप्पणियों, निबंध, समीक्षाओं का संकलन है जिनकी रचना इन दो संकलनों के अंतराल के बीच हुई। इनमें समीक्षाओं की संख्या अनुपात में कम है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी अपनी रचनाओं को समझने के लिए सहायक सूत्रों का काम करता है। उनकी मानसिक बनावट को भी ईश्वर की आँख के पहले ही आलेख सरकारें पलटती हैं जहाँ हम दर्द से करवट बदलते हैं। हंस में 1994 में छपा था। सोन नदी में लगभग डूब जाने के क्षणों में आसन्न मृत्यु का एहसास और फिर घाट पर कपड़े धो रही एक स्त्री के हाथों बचाव का क्षण, क्योंकि उस एक घटना के बाद से मृत्यु हमेशा मेरे आसपास रही है। इसी अनुभव से उपजा यह सोच कि मृत्यु को ह्यूमराइज नहीं किया जा सकता, किया नहीं जाना चाहिए। मृत्यु चेतना, विचार और इंद्रियों को अभिभूत कर डालने वाली एक गंभीर अनिवार्य उपस्थिति है। यह सत्य की आत्मा है। ऐसे निष्कर्ष तक पहुँचने के पीछे उनका पारिवारिक इतिहास की पिछली कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में 46 वर्ष की आयु रेखा को पार नहीं किया। इसके साथ ही यह भी कि जिस व्यक्ति से भी मेरी घनिष्ठता और गहरी आत्मीयता स्थापित होती है, कुछ दिनों बाद अचानक किसी आश्चर्य की तरह यह तथ्य उद्घाटित होता है कि उसके परिवार में कैंसर का हस्ताक्षेप कभी ना कभी हो चुका है। और अंत में यह स्वीकृति की, यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि कैंसर और मृत्यु के आसन्न आगमन को अतिक्रमित करने या उससे टकराने की इच्छा ही मेरी कविताओं और कहानियों का मूल उद्गम स्रोत है। क्या मृत्यु को जीतने की दारुण चेष्टा ही उदय प्रकाश की रचनाओं को समझने की कुंजी है? क्या किसी ऐसी अस्थाई चेष्टा से उनकी या किसी भी रचनाकार की संवेदनशीलता या निर्ममता को, उसकी पसंद नापसंद को, उसके तटस्थ या संलग्नता को समझा समझाया जा सकता है? या फिर ऐसी आत्मग्रासी निजता से मुक्ति या उसे अतिक्रमित करने में मिलने वाली सफलता रचना की कसौटी होती है, होनी चाहिए। इसी लेख में उन्होंने बहुत सी मौजूदा स्थितियों, सामाजिक और पृष्ठ संख्या 163 साहित्यिक से अपनी नाराजगी व्यक्त की, अपनी रचनाओं पर नकल होने के आरोपों का उत्तर दिया, पर पता नहीं कि कभी उन्होंने अपनी ही इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया या नहीं कि वह खुद चाहे बात साहित्यिक रचनाओं की करें या मीडिया की, बराबर विदेशी साहित्य के हवाले या उद्धरणों के साक्ष्य पर अक्सर काम की बात भी नामों की थोक उद्धरणी के बोझ तले दम तोड़ देती है। जरूरी नहीं कि औसत पाठक उन तमाम रचनाओं और रचनाकारों से वाकिफ हो जिनके हवाले से वह कोई स्थापना करने की कोशिश कर रहे हों। देखिए, सत्य और भाषा और उपन्यास, यह उनका ऑब्सेशन है जिसके उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। एक संभावना यह भी है कि वह उच्च भूबौद्धिकों पर नजर रखकर अपनी बात कह रहे हों। जब एक रचनाकार अपने समान धर्माओं पर पाठक आलोचक की दृष्टि से विचार करता है तो सामान्य पाठक की अपेक्षा उसके मर्म तक पहुँचने वाली अंतर्दृष्टि से वह अधिक संपन्न होता है, पर साथ ही उसके निष्कर्ष अक्सर निजी रचनाधर्मिता से परिचालित होते हैं। जरूरी नहीं कि पाठक उसके आलोचनात्मक विवेक का कायल हो। यह कठिनाई उदय प्रकाश की समीक्षात्मक रचनाओं में प्रायः पैदा होती है। अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हुए उनके अतिरेकी निष्कर्ष और अहम मन्यता की ठसक पाठक के लिए असमंजस पैदा करती है। उनके संकलन का शीर्षक ईश्वर का आँख तक इसका उदाहरण है। इन संकलनों में, आकलन और समीक्षा खंडों में संकलित कई आलेखों में, यह बात कृतियों और कृतिकारों के चयन से लेकर उनके विश्लेषण विवेचन तक दिखाई पड़ती है। चयन हो सकता है पत्रिकाओं का, जो जिनके लिए ये समीक्षाएं की गईं, पर विवेचन का श्रेय तो समीक्षक के हिस्से में ही आएगा। इसके बावजूद उनकी समीक्षाओं के बीच तमाम सूत्र ऐसे होते हैं जो रचनाकार आलोचक की कलम से ही उतर सकते थे, अध्यापकीय ढंग की आलोचना से नहीं। विशेषकर कृतियों में समय की पहचान का उनका आग्रह, साहित्य को देखने की बृहत्तर दृष्टि उसे पाठक के लिए प्रासंगिक ही नहीं बनाती, उसके नजरिए और समझ का विस्तार भी करती है। आलोचना को कथ्य और शिल्प की बंद और एक्सक्लूसिव कारा से बाहर निकालकर समाज की खुली दुनिया से जोड़ती है। अनकहे ढंग से प्रतिमानों की अवधारणा पृष्ठ संख्या 164 का विस्तार भी करती है। यह संभव शायद इसलिए हुआ कि उदय प्रकाश ने निरंतर फिल्म पत्रकारिता संस्कृति के तमाम अन्य क्षेत्रों में विचरण और संघर्ष किया। नतीजतन समाज में जो भी घटित हो रहा था उस पर उनकी नज़र बराबर टिकी रही। कहना ना होगा कि इस अनुभव समृद्ध जीवन दृष्टि ने, ब्रैकेट में भले ही उसमें कटुता का योग अधिक रहा हो, यदि उनमें तल्खी पैदा की, उनके राग द्वेष को नियमित किया, तो विवेक और प्रौढ़ समझ भी कम पैदा नहीं की। इसका प्रमाण उनकी समीक्षाओं से ज़्यादा उन तमाम टिप्पणियों में मिलता है जो उन्होंने सामयिक विषयों पर अखबारों और पत्रिकाओं में की। वे अपनी वस्तुनिष्ठ दृष्टि और बेलाग अभिव्यक्ति के कारण अधिक प्रभावी हैं, इसलिए और भी क्योंकि उनका लेखक महज पत्रकार नहीं, मेधावी रचनाकार है।